मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 24 दिसंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों कल 25 दिसंबर है, क्रिसमस का पर्व है, तो सबसे पहले तो मैं क्रिसमस की आप सबको, आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और कल क्रिसमस है मित्रों, तो स्वाभाविक तौर पर कल लाइफ मैनेजमेंट नहीं आ सकेगा, मैं कल आप लोगों से बात नहीं कर सकूंगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस अवसर को एक अलग विषय के रूप में बातचीत करने का आधार बनाना चाहिए और आज मैं वही आधार लेकर के आप लोगों से कुछ ऐसी बातें करने जा रहा हूं जिन बातों से शायद आप सहमत न हों। और वैसे अच्छी बात है कि आप सहमत न हो। जब कोई भी व्यक्ति किसी से सहमत नहीं होता है तो क्या करता है? असहमति व्यक्त करता है। और जब असहमति व्यक्त करेगा तो कुछ न कुछ तो तथ्य रखेगा ही। अब ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, नहीं नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। आप कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो कहेंगे कि भाई आप क्यों बात नहीं मानते। और सच पूछिए तो चाहे ज्ञान का विस्तार हो या विचारों में फैलाव हो, इसी कारण ही होता है। तो चलिए हम इस अवसर को एक ऐसे ही कारण के रूप में ले लेते हैं कि आप इस पर सोच विचार करेंगे और अपने विचारों को फैलाएंगे। दोस्तों यहां मैं शुरुआत इस बात से करने जा रहा हूं कि देखिए जब धर्म की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं। धर्म को सीधे सीधे पहले तो ईश्वर से जोड़ देते हैं, ठीक है चलिए आप ईश्वर से जोड़ दीजिए, फिर उसे सीधे सीधे फिर आप कह लीजिए कि एक अनुभूति का भाव बना देते हैं या यूं कह लीजिए कि अनुभूति की वस्तु बना देते हैं, इसीलिए उस पर ज्यादा बहस नहीं हो पाती। कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है या धर्म क्या होता है, तो कहते हैं नहीं देखिए ये तो श्रद्धा की बात होती है, अगर आपके मन में श्रद्धा है विश्वास है तो धर्म है, अगर नहीं है तो वो नहीं है। अब आप कोई इसे तर्क के आधार पर अगर आप मानना चाहते हैं तो वह संभव नहीं होता है। तर्क तो ज्ञान की चीज होती है जबकि जो धर्म है वो अनुभूति की चीज होती है। यहां मैं जो कहने जा रहा हूं वह यह कि ठीक है धर्म में या कह लीजिए कि जब कोई भी भाव प्रधान बात होती है, भाव प्रधान अवसर होता है और धर्म को हम एक भाव प्रधान मान भी लेते हैं तो उसमें भावना की प्रधानता होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो तर्क से बिल्कुल परे हो, उस पर विचार किया ही नहीं जाना चाहिए। बल्कि उल्टे मुझे ये लगता है कि अगर हम धर्म को विचार पूर्वक स्वीकार करते हैं, देखिए अगर आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिजेक्ट कर देंगे, चलिए आप रिजेक्ट कर दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप स्वीकार करने की स्थिति में हैं और विचार पूर्वक स्वीकार कर पाते हैं तो दो बड़ी अद्भुत चीजें आपके साथ होंगी। पहली बात तो यह है कि चूंकि आपने विचार करके स्वीकार किया है तो उसे संपूर्णता के साथ स्वीकार करेंगे, वो जो स्वीकार्य का भाव है आपके बहुत गहरे उतरेगा। और दूसरा यह है कि बहुत गहरे उतर करके वो बहुत लंबे समय तक आपके पास मौजूद भी रहेगा और सही मायने में वह आपके जीवन को बहुत आगे तक ले जाएगा, क्योंकि आपने विचार पूर्वक स्वीकार किया है तो उसके एक्शन आपके अंदर होने शुरू हो जाएंगे, मतलब आप उसके व्यावहारिक पक्ष को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो धर्म हमारे लिए फिर सिर्फ कोई कर्म कांड ही नहीं बनेगा बल्कि एक तरह से व्यवहार का आधार बन जाएगा, हमारा आचरण बन जाएगा। और सच पूछिए तो धर्म यही करता है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम धर्म को विचार पूर्वक स्वीकार कर पाते हैं, क्या धर्म में तर्क का स्थान है? मित्रों इसके लिए मैं आपके सामने जो ईसा मसीह के जीवन से संबंधित एक दो पक्ष हैं जो बड़े अच्छे जो अंश हैं वो रखने जा रहा हूं। देखिए ईसा मसीह, क्या ईसा मसीह से पहले कोई धर्म नहीं था? ईसा मसीह से पहले भी कोई धर्म था। हम अपने अगर भारतीय धर्म की पूरी परंपरा को देखें तो हर धर्म से पहले कोई ना कोई धर्म तो था ही। इसके बाद फिर एक नए धर्म की शुरुआत हुई। सोचने की जो परंपरा होगी या यूं कह लीजिए कि सोचने का जो बिंदु होगा वो यहीं से होगा। पहले कोई धर्म था, इसके बाद फिर से एक नया धर्म बन गया, फिर कोई नया धर्म बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म कोई शाश्वत वस्तु नहीं है, लगातार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहे हैं? सीधी सी बात है कि कोई भी धर्म अपने समय को एड्रेस करता है, वो अपने समय को देखता है, अपने समय के रिक्वायरमेंट को समझता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी जरूरतों के हिसाब से फिर वो अपने सिद्धांत रखता है। तो धर्म को भी आप एक तरह से विचार कह सकते हैं, एक पवित्र विचार आप कह लीजिए। धर्म भी एक तरह से दर्शन शास्त्र ही है। अब आप देखें कि जब ईसा मसीह जो क्रिश्चियन धर्म के प्रणेता हैं, जहां से शुरुआत हुई है, उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। बकायदे एक आप यूं कह लीजिए कि बेंच बैठी थी, अदालत बैठी थी, और उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, उनसे उन आरोपों के जवाब मांगे गए थे। तो मैं आपको दो तीन बड़े इंटरेस्टिंग आरोप जो उन पर लगे थे वो सुना रहा हूं। पहला तो उनका आरोप, उन पर ये आरोप लगा कि ये जो विश्राम दिवस है इसका नियम नहीं मानते। यानी कि इससे पहले ये कहा जाता था कि रविवार को ईश्वर ने संसार को बनाने के बाद विश्राम किया और इसीलिए रविवार को आराम करना चाहिए। देखिए कि पूरी दुनिया में रविवार को छुट्टी इसीलिए मनाई जाती है, लेकिन ईसा मसीह से नहीं मानते थे। तो देखिए, पहला तो यह आरोप था। चलिए यह आरोप मान लीजिए, कोई बात नहीं, एक नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा आरोप है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मंदिर के विरुद्ध बोलते हैं, यानी कि जो देवालय है उनके विरुद्ध बोलते हैं। और अगला है धर्म की निंदा करते हैं, और इसका अगला है कि अपने को ईश्वर का पुत्र घोषित करते हैं। तो भैया, ये कौन से मंदिर की निंदा कर रहे थे या देव स्थलों की निंदा कर रहे थे? फिर कह रहे हैं कि ये धर्म की निंदा करते हैं। तो किस धर्म की निंदा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? देखिए, यहीं पर सोचने की बात है। ये कह रहे हैं, उस समय का जो समाज है कह रहा है कि ये धर्म की निंदा कर रहे हैं। इन्होंने निंदा की, जो उस समय जो कुछ भी उनके सामने था उसकी निंदा की। और मजेदार बात है कि जिनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि ये धर्म की निंदा कर रहे हैं, उन्हीं को फिर एक नए धर्म का प्रणेता मान लिया जाता है, वहां से एक नए धर्म की शुरुआत मान ली जाती है। तो ये क्या हो रहा है? मतलब आपको कुछ उलझन सी महसूस नहीं हो रही है कि धर्म की निंदा कर रहे हैं? और यहां तक निंदा हुई है, आप देखिए कि इनको सजा दे दी गई, मतलब आप आधुनिक भाषा में कह लीजिए कि फांसी की सजा दे दी गई, सूली पर चढ़ा दिया गया। इतनी बड़ी सजा दी गई, मतलब इतना बड़ा अपराध था इनका ईसा मसीह का और धर्म की निंदा करने से संबंधित, और उन्हीं को फिर हम नए धर्म का प्रणेता मान लेते हैं। और एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताना चाहूंगा मित्रों, कि वहां एक उत्सव होता था जिसे पास्का पर्व कहते थे, है ना, वो कि एक मुक्ति दिवस के रूप में मनाते थे। ईसा मसीह के समय की बात कर रहा हूं। तो उस दिवस पर होता क्या था कि ये माना जाता था कि भाई जो बंदी हैं, जो जेल में कैद हैं, उनमें से किसी एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। अभी भी आपने देखा होगा कि कभी कभी हमारे यहाँ भी होता है कि 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन कुछ बंदियों को रिहा कर दिया जाता है जिनके आचरण व्यवहार ठीक ठाक होते हैं। तो अब पास्का पर्व था और एक को रिहा किया जाना था। तो जनता से पूछा गया कि ये बताओ कि किसे रिहा किया जाए। दो लोगों में से, दो लोगों के नाम दिए गए, उसमें एक था बराबस। ये जो बराबरस था ये राजद्रोही था और इसने बहुत लोगों की हत्या भी की थी। तो राजद्रोह और हत्या के आरोप में यह बंदी था। और दूसरा ईसा मसीह, जो धर्म की निंदा के आरोप में बंदी है। तो जनता से पूछा गया कि इन दोनों में से किस एक को छोड़ दिया जाए, आज मुक्ति दिवस है तो एक को मुक्त कर देते हैं। आप समझ गए होंगे कि जनता ने क्या फैसला किया, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मतलब ये व्यक्ति इतना बड़ा दोषी था उस काल में, आप सोचिए कि राजा की निगाह में भी और जनता की निगाह में भी, और बाद की जनता उसे ही अपना एक ईश्वर मान रही है। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो सच्चाइयां हैं, ये सच्चाइयां हमें इस बात के लिए कहती हैं, चीख चीख कर कह रही है कि नहीं, धर्म समझने की भी चीज है, आप उसे समझिए। क्योंकि अगर समझने की चीज नहीं होती, वो अगर वह शाश्वत होता तो एक ही होता और वही चलता चला आता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि इस बात को सोच समझ कर अगर हम अपने अंदर उतारें तो डेफिनेटली धर्म का एक जो सही उपयोग हम सब अपने अपने जीवन के लिए कर सकते हैं वह कर सकेंगे। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब एक बार फिर से मैं आप सबको क्रिसमस की पूर्व शुभकामनाएं देता हूं और इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की इजाजत भी चाहता हूं। नमस्कार।